लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पाप फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। बुधवार आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के सामने सद्गुणों पर अपनी धर्म शिक्षा माला जारी रखते हुए न्याय के सद्गुण पर चिंतन किया। संत पापा ने उपस्थित सभी लोगों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रतेली सुरेले, बोना पास्कुआ, बुंजोर्नो।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, खुश पास का पर्व सुप्रभात।
Eccoci alla seconda delle virtù cardinali.
मौलिक सद्गुणों में से दूसरे सद्गुण पर चिंतन करते हुए आज हम न्याय के बारे बात करेंगे।
La virtù sociale per eccellenza.
यह सर्वोत्कृष्ट सामाजिक सद्गुण है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा इसे इस प्रकार परिभाषित करती है, यह नैतिक सद्गुण है जिसमें ईश्वर और दूसरों को वह देने की निरंतर और दृढ़ इच्छा होना है जो उनके लिए उचित है। संत पापा ने कहा, यही न्याय है। अक्सर जब न्याय का उल्लेख किया जाता है तो इसका प्रतिनिधित्व करने वाले आदर्श वाक्य का भी हवाला दिया जाता है, यूनिक्वीक्वे सुम, यानी प्रत्येक को अपना। यह कानून का सद्गुण है जो समानता के साथ लोगों के बीच संबंधों को विनियमित करना चाहता है। इससे प्रतीकात्मक रूप से तराजू द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य लोगों के बीच बराबर करना है, खासकर जब वे कुछ असंतुलन से विकृत होने के जोखिम में हैं। इसका उद्देश्य यह है कि समाज में सभी के साथ उनकी गरिमा के अनुसार व्यवहार किया जाए। लेकिन प्राचीन गुरुओं ने पहले ही सिखलाया था कि इसके लिए अन्य सद्गुणी दृष्टिकोण भी आवश्यक है, जैसे परोपकार, सम्मान, कृतज्ञता, मिलनसारिता, ईमानदारी, ऐसे सद्गुण जो लोगों के अच्छे सहअस्तित्व में योगदान करते हैं। न्याय लोगों के अच्छे सहअस्तित्व के लिए एक सद्गुण है।
Un mondo senza leggi che rispettano i diritti sarebbe un mondo in cui è impossibile vivere.
हम सभी समझते हैं कि समाज में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए न्याय कितना मौलिक है। अधिकारों का सम्मान करने वाले कानूनों के बिना दुनिया एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें रहना असंभव होगा, या एक जंगल जैसा होगा। न्याय के बिना शांति नहीं है। वास्तव में जब न्याय का सम्मान नहीं किया जाता है तभी संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं।
Senza giustizia si sancisse la legge della prevaricazione del forte sui deboli.
न्याय के बिना कमजोरों पर ताकतवरों के दुरुपयोग का कानून स्थापित हो जाता है, और यह सही नहीं है। न्याय एक ऐसा सद्गुण है जो बड़े और छोटे दोनों स्तर पर कार्य करता है। इसका संबंध न केवल अदालतों से है बल्कि उस नैतिकता से भी है जो हमारे दैनिक जीवन को अलग बनाती है। वह दूसरों के साथ ईमानदार संबंध स्थापित करता है, उसे सुसमाचार के सिद्धांत का एहसास दिलाता है जिसके अनुसार ख्रिस्ती बातचीत को हाँ की हाँ या ना की ना होनी चाहिए, और यदि इससे अधिक है तो वह बुराई से उत्पन्न होती है। अर्धसत्य दोहरी बातचीत जो दूसरों को धोखा देना चाहता है, मौन जो वास्तविक इरादों को छिपाती है, न्याय के अनुरूप दृष्टिकोण नहीं है। सही आदमी ईमानदार, सरल और स्पष्टवादी होता है। वह मुखौटा नहीं पहनता, जो है वैसा ही प्रस्तुत करता है और सच बोलता है। धन्यवाद शब्द अक्सर उसके होठों पर पाया जाता है, वह जानता है कि हम चाहे कितना ही उदार बनने की कोशिश क्यों ना करें, हम हमेशा दूसरों से ऋणी रहेंगे। अगर हम प्यार करते हैं तो इसलिए क्योंकि हमें भी प्यार किया गया है। संत पापा ने कहा, परंपरा में न्यायप्रिय व्यक्ति के अनगिनत वर्णन मिलते हैं। आइए हम उनमें से कुछ पर गौर करें। न्यायप्रिय व्यक्ति कानूनों के प्रति श्रद्धा रखता है और उसका सम्मान करता है, यह जानते हुए कि कानून घेरे का निर्माण करते हैं जो असहाय लोगों को शक्तिशाली लोगों के अहंकार से बचाते हैं। सही व्यक्ति न केवल अपनी व्यक्तिगत भलाई का ख्याल रखता बल्कि वह पूरे समाज की भलाई चाहता है। इसलिए वह केवल अपने बारे नहीं सोचता और अपने स्वयं के मामले की चिंता के प्रलोभन में नहीं पड़ता, चाहे वे कितने ही वैध क्यों ना हों, मानो कि वे ही एकमात्र ऐसी चीज हों जो दुनिया में मौजूद हों। न्याय का सद्गुण यह स्पष्ट करता है कि मेरे लिए यह सही नहीं हो सकता यदि इसमें सबकी भलाई ना हो। इसलिए सही व्यक्ति अपने व्यवहार पर नजर रखता है ताकि वह दूसरों के प्रति हानिकारक ना हो। यदि वह कोई गलती करता है तो वह माफी मांगता है। संत पापा ने कहा, सही व्यक्ति हमेशा माफी मांगता है और कुछ स्थितियों में वह समुदाय को उपलब्ध कराने के लिए अपने व्यक्तिगत हित का त्याग करता है। वह एक व्यवस्थित समाज चाहता है जहां लोग पदों की गरिमा बनाए रखते हैं, ना कि पद उन्हें प्रतिष्ठा देता है। वह गुण कीर्तन से घृणा करता है और एहसान का सौदा नहीं करता। वह जिम्मेदारी पसंद करता है और वैधता के साथ जीने और उसे बढ़ावा देने में अनुकरणीय है। इसके अलावा न्यायी व्यक्ति बदनामी, झूठी गवाही, धोखाधड़ी, सूदखोरी, उपवास और बेईमानी जैसे हानिकारक व्यवहारों से दूर रहता है। न्यायी व्यक्ति अपनी बात रखता है, जो उधार लिया है उसे लौटा देता है, सभी श्रमिकों के लिए सही वेतन देता है। जो व्यक्ति श्रमिकों के लिए सही वेतन की मंजूरी नहीं देता वह न्यायपूर्ण नहीं है। संत पापा ने कहा, वह अन्यायी है। उन्होंने कहा कि हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे दुनिया में धर्मी लोग असंख्य हैं या बहुमूल्य मोतियों की तरह दुर्लभ हैं, लेकिन वे ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं पर और जिस दुनिया में रहते हैं उस पर अनुग्रह एवं आशीर्वाद लाते हैं। न्यायी लोग नैतिकतावादी नहीं होते जो सेंसर की भूमिका निभाते हैं, बल्कि ईमानदार हैं जो न्याय के भूखे और प्यासे हैं। वे सपने देखने वाले हैं जो अपने दिल में सार्वभौमिक भाईचारे की इच्छा रखते, और इस सपने की हम सबको आज खासकर बहुत जरूरत है। हमें न्यायी पुरुष और महिला बनने की जरूरत है और इससे हमें खुशी मिलेगी। इतना कहने के बाद संत पापा ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की। तत्पश्चात उन्होंने युवाओं, बीमारों, बुजुर्गों और नवविवाहितों की विशेष रूप से याद की। और अंत में ही हमारे पिता प्रार्थना का पाठ करते हुए सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Fili, et Spiritus Sancti.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन में अपने बुधवारी आम दर्शन समारोह के दौरान गाजा में युद्ध विराम के लिए अपनी नवीनतम जोरदार अपील की। पवित्र भूमि में युद्ध पर विचार करते हुए संत पापा ने मध्य पूर्व से लगातार आ रही दुखद खबरों पर शोक व्यक्त किया। संत पापा ने कहा, दुर्भाग्य से मध्य पूर्व से दुखद समाचार आते रहते हैं। मैं गाजा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम के लिए अपने दृढ़ अनुरोध को नवीनीकृत करता हूं। मैं गाजा में मानवीय सहायता वितरित करते समय मारे गए स्वयं सेवकों के लिए गहरा खेद व्यक्त करता हूं। मैं उनके और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं। संत पापा ने आगे कहा, मैं थके हुए और पीड़ित नागर आबादी के लिए मानवीय सहायता तक पहुंच की अनुमति देने और बंधकों को तुरंत रिहा करने की अपील को नवीनीकृत करता हूं। आइए हम इस क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ाने के किसी भी गैर जिम्मेदाराना प्रयास से बचें और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करें कि यह और अन्य युद्ध जो दुनिया के कई हिस्सों में मौत और पीड़ा ला रहे हैं जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। संत पापा ने विश्वासियों से प्रार्थना में शामिल होने और हथियारों को शांत करने एवं शांति की वापसी के लिए अथक प्रयास करने का आह्वान करते हुए अपनी अपील को समाप्त किया। इसके बाद संत पापा ने 23 वर्षीय यूक्रेनी सैनिक अलेक्जेंडर को याद किया जो युद्ध में मारा गया था। संत पापा के हाथों में दिवंगत सैनिक की रोजरी माला और नए नियम की पुस्तिका थी। संत पापा ने कहा, मेरे हाथों में युद्ध में मारे गए एक सैनिक द्वारा छोड़ी गई एक रोजरी माला और एक नया नियम पुस्तिका है। इस युवक का नाम अलेक्जेंडर था। वह 23 वर्ष का था। संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में बुधवारी आम दर्शन समारोह के समापन से पहले सोच समझ कर यह विवरण साझा किया। संत पापा ने कहा, आइए पीड़ित यूक्रेन को न भूलें, इतनी सारी मौतें। नया नियम पुस्तिका को दिखाते हुए संत पापा ने कहा, अलेक्जेंडर ने न्यू टेस्टामेंट और भजनों को पढ़ा और भजनों की पुस्तक भजन 129 में रेखांकित किया गया है, हे प्रभु मैं गहराई से तुझे पुकारता हूँ, हे प्रभु मेरी आवाज सुनो। यह 23 वर्षीय लड़का अवदीवका में युद्ध में मारा गया। संत पापा ने प्रांगण में उपस्थित विश्वासियों को उनके साथ मौन के क्षण में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, मैं इस समय थोड़ा सा मौन लेना चाहूंगा। हर कोई इस लड़के और उसके जैसे कई अन्य लोगों के बारे में सोचे जो युद्ध के इस पागलपन में मारे गए। युद्ध हमेशा विनाश करता है। आइए हम उनके बारे में सोचें और प्रार्थना करें।
उधर विभिन्न राष्ट्रीयताओं के श्रद्धालु कल शाम मंगलवार 2 अप्रैल को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की मृत्यु की 19वीं वर्षगांठ पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रोजरी प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए। विभिन्न भेदों का पाठ चीनी, यूक्रेनी, अंग्रेजी, इतालवी और पोलिश में की गई। ये चिंतन 1990 के पास्का समारोह के अवसर पर स्वयं कहे गए संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के संदेशों से लिए गए थे। रोम के धर्माध्यक्ष और शहीद संत स्तानिस्लाउस गिरजाघर की सिस्टर मार्टिना प्रोसेक द्वारा निर्देशित गाउडियम पोलोनिया गायक मंडली ने विश्वासियों की पहल पर बनाए गए इस कार्यक्रम को संगीतमय पृष्ठभूमि प्रदान की। जागरण प्रार्थना के अंत में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय फाउंडेशन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और संत स्तानिस्लाउस गिरजाघर के रेक्टर मोनसिन्योर पावेल ने कहा, हम संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो वर्षों पहले की तरह हमें इस अंतर्राष्ट्रीय लेकिन सबसे ऊपर पोलिश समुदाय में प्रार्थना करने के लिए एक साथ लाते हैं, और हमें यकीन है कि वे हमारे मतलबों के लिए हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। साथ ही मोनसिन्योर पावेल ने प्रतिभागियों को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें अपने परिवारों और समुदायों में प्रार्थना में बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की मृत्यु 2 अप्रैल 2005 को हुई। अंतिम संस्कार 8 अप्रैल 2005 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन कार्डिनल जोसेफ रात्सिंगर ने की थी, जो बाद में संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में चुने गए और अपना नाम संत पापा बेनेडिक्त 16वें रखा। संत पापा बेनेडिक्त ने स्वयं 1 मई 2011 को पोलिश पोप को धन्य घोषित किया, जबकि संत पापा फ्रांसिस ने 27 अप्रैल 2014 को संत पापा जॉन 23वें के साथ उन्हें भी संत घोषित किया। उनके संत घोषित होने की 10वीं वर्षगांठ पर 27 अप्रैल को शाम 5 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर में एक पवित्र मिस्सा समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवानी बत्तीस्ता रे करेंगे। उधर लगभग एक वर्ष के गृह युद्ध से तबाह हुए सूडान में कैथोलिक कलीसिया की मानवीय गतिविधियां जारी हैं। पोर्ट सूडान में कोम्बोनी कॉलेज के एक मिशनरी ने असाध्य रूप से बीमार लोगों के लिए देखभाल का एक क्लिनिक खोला। उन्होंने कहा, हम उन लोगों की मदद करते हैं जिन्हें युद्ध के कारण बहिष्कृत कर दिया जाता है। युद्ध लगातार मौत पैदा करता है, लेकिन युद्ध जीवन को खत्म नहीं कर सकता। इन शब्दों के साथ सूडान में अभी भी मौजूद कोम्बोनी मिशनरी उस भावना का वर्णन करते हैं जिसके साथ सेना के गुटों के बीच गृह युद्ध से तबाह अफ्रीकी देश में पास्का का अनुभव किया गया था, जिसकी पहली वर्षगांठ कुछ ही दिनों में होगी। अप्रैल 2023 में शुरू हुए संघर्ष के कारण अब तक कम से कम 15,000 आंतरिक रूप से विस्थापित और शरणार्थी इस क्षेत्र के पड़ोसी देशों में भाग गए हैं। उधर अमेरिका स्थित सहायता संगठन वर्ल्ड सेंट्रल किचन के एक बयान अनुसार उनके कर्मचारियों के 7 सदस्य इजरायली सेना द्वारा लक्षित हमले में मारे गए। इसके अलावा संगठन ने कहा कि वह गाजा में अपने संचालन को निलंबित कर रहा है। 7 कर्मचारी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, पोलैंड, अमेरिकी, कनाडाई और एक फिलिस्तीन से थे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने स्वीकार किया कि अनजाने में इसराइली हमले में निर्दोष लोग मारे गए। उन्होंने कहा, हम सब कुछ करेंगे ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।